आशीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदा मदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति। अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा सृजन्तोर् निहितो गुहायां तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः। आत्मतत्व स्थित हुआ भी दूर तक जाता है, वो शयन करता हुआ भी सब तक पहुंच जाता है, जहां हर्ष और अमर्ष नहीं है। ऐसा आत्मदेव मेरे को छोड़कर और उसको कौन जानता है। आचार्य यम ने बालक नचिकेता को ज्ञान का उपदेश करते हुए कहा, अक्रतुः पश्यति धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। निष्काम व्यक्ति इंद्रियों के प्रसाद से उस आत्म तत्व की महिमा को जानता है और जानकर शोक और मोह से दूर हो जाता है। शोकम तरति आत्मविद्। आत्मज्ञानी पुरुष शोक से तर जाता है। शोक मोह राग द्वेषादि विकार जलन घृणा ईर्ष्या ये सभी चीजें अज्ञानी की सूचना है। ये सभी चीजें अज्ञानी में विराजती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस पर नियंत्रण करना और नियंत्रण कर आत्मज्ञान को प्राप्त करना। आत्यंतिक निवृत्ति तो आत्मज्ञान से ही संभव है। दो प्रकार की निवृत्ति होती है, एक लयरूप निवृत्ति और दूसरी आत्यंतिक निवृत्ति। लयरूप निवृत्ति का मतलब होता है कारण रहते हुए कारण में कार्य की जो निवृत्ति है वो लयरूप निवृत्ति है। जैसे हम पेड़ की शाखाओं को काटते हैं, लेकिन जड़ें वैसी की वैसी बनी रहती हैं। उसका मूल उसका बीजत्व तो वैसा का वैसा बना रहता है। हम कितना भी शाखाएं काट दे पुनः पैदा हो जाती हैं। इसलिए इसको बोलते हैं लयरूप निवृत्ति। कारण वैसा का वैसा विद्यमान है, हम ऊपर से हटा देते हैं, काटते हैं डारियां फिर उगाते हैं। और दूसरी आत्यंतिक निवृत्ति पेड़ को अपने जड़ से ही उखाड़ डाला। अब उसके बाद कोई शाखा की उत्पत्ति संभव नहीं है, क्योंकि अब वो तो जड़ ही नहीं रही ना। हमारे जीवन में भी रागादि विकार शोक मोह आदि विकारों की लयरूप निवृत्ति और आत्यंतिक निवृत्ति ये मानी गई है। शोक मोहादि राग द्वेषादि जलन घृणा ईर्ष्या आदि जो भाव हैं, ये भाव भी हमें मिटाते रहना है। आप ऐसा समझ लीजिए कि किसान क्या करता है, कोई बहुत कांटे वाले पौधे होते हैं और उसको जड़ से उखाड़ना संभव नहीं होता है, तो उसको ऊपर की डाले शाखाएं काटता जाता है। बहुत ज्यादा कांटे वाले पौधे उग आए हैं खेत में। अब वो कांटे वाले पौधे उसके खेती को नुकसान पहुंचा देंगे, खेती को नष्ट कर देंगे, तो किसान क्या करता है, उसको ऊपर ऊपर उसको काट डालता है और उसके प्रभाव में फिर जो आपकी खेती है, आपका जो धान है वो बहुत तेजी से ऊपर उठता है और एक बार वो धान बढ़ जाता है तो उसके बाद फिर उसका नुकसान नहीं कर पाता है। एक बार उस धान को उठना है बस, और एक बार धान उठने के बाद वो कांटे वाले पौधे उग आए उसमें, जब किसान देखता है कि मेरी धान अब बढ़ गई है, उसके बाद उस खेत की फिर वो खरपत बोलते हैं उसको, घास वगैरह, वो कांटे वाले पौधे निकालता नहीं है, उसको छोड़ देता है। ऐसे हमारे जीवन में भी है, हमारे जीवन में भी आत्मज्ञान के पौधे को उगाना है, आत्मज्ञान को पाना है, और उसमें सबसे बड़ा प्रतिबंध हमारा ही मन, हमारी ही वासना, हमारी जलन, घृणा, ईर्ष्या, ये आसक्तियां प्रतिबंध कर देती है। भगवान ने तो ये बोला, वायुर नाव मिवाम वसी, जाना था कहीं और हवा का झोंका हमें कहीं और ले जाता है। नाव में पतवार लगी है, हवा के झोंके से चलती है, हमारा नियंत्रण नहीं है, हवा का झोंका जिधर चाहे उधर ले जाता है। जहां हम जाना नहीं चाहते वहां पर वो हवा हमें ले जाती है। ये वासना है ना, ये हवा की तरह, और वो हमें खींच के ले जाते, जहां जाना नहीं चाहते वहां पर हम चले जाते। हम जो करना नहीं चाहते वो कर लेते हैं, जो सोचना नहीं चाहते वो सोच लेते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो चीज हमारे जीवन में आए, वो भी चीजें वासना के कारण आ जाती हैं। और ये बिल्कुल उस कांटे वाले पौधों की तरह जो खेत में पैदा होकर उस धान को बर्बाद कर देते हैं। तो किसान क्या करता है, उतना सामर्थ्य नहीं है अभी उन पौधों को, कांटे वाले पौधों को जड़ से उखाड़ने का सामर्थ्य अभी नहीं है, तो वो क्या करता है, उस पर नियंत्रण करता है। ऊपर ऊपर की कटे लय रूप निवृत्ति है, भले ही वो दोबारा आ जाए लेकिन अपने पौधों की रक्षा करता है, अपने पौधों को वो बढ़ाता है। और यही तो साधना, यही तो साधना है, यही तो आराधना है, यही तो सिद्धि है। साधना की सिद्धि यही है कि हम अपनी साधना को बचाने के लिए इन कामादि विकारों के ऊपर नियंत्रण करते जाए, रागत विषादी मनोविकारों पर नियंत्रण करते जाए। और यदि हम रागादि विकारों में ही पड़े रहे तो आत्मज्ञान का जो अंकुर है, जो सद्भावनाएं हैं, जो धातु प्रसाद शब्द के द्वारा यहां पर आचार्य यम ने प्रस्तुत किया, तमक्रतु, वो अक्रतु, वो निष्काम, अभी वो पूर्ण रूप से निष्काम नहीं है, वो साधना है, एक साधक है। साधक की जीवन में भी निष्कामता रहती है और सिद्ध के जीवन में भी निष्कामता रहती है, लेकिन दोनों के जीवन के निष्कामता में अंतर है। एक निष्कामता है अत्यंतिक, अब वहां विकार पैदा होने की संभावना ही नहीं है। ज्ञान के द्वारा अज्ञान मिट गया, अज्ञान सहकृत संपूर्ण कामादि विकार मिट गए, अब वहां कारण ही नहीं रहा, विकारों का कारण अज्ञान वो नहीं रहा, और इसीलिए वहां कामादि, रागादि, द्वेष आदि पैदा होने की संभावना ही नहीं है, अब वहां संभावना रही ही नहीं। लेकिन साधक हैं वो, श्रवण मनन निदिध्यासन आदि के द्वारा सद्भावनाओं को पैदा कर जो ज्ञान को पाने की सामग्री है। शमादि षट संपत्ति, शम दम श्रद्धा आदि को प्राप्त कर आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहता है और उसको मालूम है कि ये सांसारिक मनोभाव हमारी साधना को बिगाड़ देंगे और इसीलिए वो रागादि विकारों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है और वो अकाम होने का अनुभव भी करता है। ध्यान देना, जब वो अपने विकारों पर नियंत्रण करता है तो उसको भी अनुभव होता है कि मैं अविकारी हूं, मैं अकाम हूं। कुछ भी भावनाओं पर नियंत्रण करता है एक किसान की तरह और अपने भीतर के आत्मज्ञान के पौधे को वो बढ़ाता है और उसके बाद फिर उसका कोई नुकसान नहीं कर पाते वो भाव। इसलिए आप बहुत महत्वपूर्ण बात बोली उन्होंने, पश्यति, और पश्यति माने यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। परोक्ष ज्ञान के बाद वो अपरोक्ष ज्ञान करता है। मैंने आपको आभास की माने जीव की सात अवस्थाओं का प्रतिपादन किया था। सात अवस्थाएं अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, शोकनाश और आनंदावाप्ति। पहली जो अवस्था है वो अज्ञान की अवस्था है। अज्ञान की अवस्था माने आत्मा को हम नहीं जानते हैं, आत्मा को हम नहीं जानते, परमात्मा को नहीं जानते हैं, हम अपने आप को नहीं जानते हैं, यही तो अज्ञान है। हमारा जो परिचय है वो शरीर का परिचय है, जो नहीं है वो परिचय है। हम बोलते हैं कि हम शरीर हैं, ये जो हमारी आइडेंटिटी है ना, ये बदलने वाली आइडेंटिटी, परिवर्तित होने वाली है। हम बोलते हैं हम बच्चे हैं और जवान होने के बाद, जवान होने के बाद हम जवान बोलते, बच्चे नहीं बोलते, पहले बोलते थे और उसके बाद फिर बुढ़ापा आने के बाद जवानी हमारा परिचय नहीं रहता है फिर, और उसके बाद आप ये भी बोलते हैं कि हम मर गए। तो आपका जीवन भी परिचय है और मरना भी परिचय, ये परिवर्तनशील जो परिचय है ये आत्मा का परिचय नहीं, ये तो शरीर का परिचय है। और जो चीज नहीं है वो चीज हम समझ रहे हैं, ये आवरण है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हम अपने आप को नहीं जानने के कारण और कुछ समझ लेते हैं, सही ज्ञान के अभाव में हम कल्पना करते हैं और वही तो आवरण है। उसने अज्ञान ने आवरण डाला माने अपने आप को जानने नहीं दिया। ये तीन चीजें होगी, अज्ञान, आवरण और विक्षेप, ये जीव की बंधन की अवस्था है। हम नहीं जानते आत्म तत्व को, हम नहीं जानते अपने आप को, क्योंकि नहीं जानते हैं ये अज्ञान, इसने हमारे ऊपर आवरण कर लिया, ढक दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ, विक्षेप। हमने अपने आप को कुछ समझा। आप इन तीनों अवस्थाओं को नींद की अवस्था से समझ सकते हैं। जैसे आप सो रहे हैं, आप सो रहे माने आप अज्ञान में हैं, आप सो रहे माने अपने आप को नहीं जानते। उस समय आपको आके कोई पूछे आप कौन है तो आप सो रहे हैं, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, वो अज्ञान की अवस्था है। और उस समय मान लो कि आपके शरीर से गुजर जाए कोई सांप, आप बहुत डरते हैं छिपकर से और आप सो रहे हैं, पता नहीं कितने बार गुजरी हो सोते समय, लेकिन आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आप सो रहे हैं, आप अज्ञान में हैं। अज्ञान में गहरी नींद माने हमारी इंद्रियां सुप्त हो गई और इसीलिए हमारा आत्मस्वरूप हमारा होना ढका है और उसके बाद स्वप्न देखते हैं। आपकी नींद है, नींद ने आपके स्वरूप को ढका है, आवरण है, और उसके बाद फिर विक्षेप, स्वप्न देखना ही विक्षेप। अब आप स्वप्न देख रहे हैं, आदमी जाग के कभी स्वप्न नहीं देखता है। यदि स्वप्न देखना हो तो आपको सोना ही पड़ेगा। आपको स्वप्न देखना है तो आपको सोना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। और स्वप्न जो है ना विक्षेप है। अब वो विक्षेप दोनों प्रकार का, एक सुखद हो सकता है, दूसरा दुखद हो सकता है। याज्ञान, आवरण और विक्षेप। तीसरी अवस्था, ये सामान्य अवस्था है, ये जीवात्मा की सामान्य अवस्था है। और वो थोड़ा अपने आप को ऊपर उठाता है, वो सत्संग में जाता है, गुरु के पास जाता है, सत्संग के द्वारा श्रवण मनन निधिध्यासन करता है, तो उसके बाद उसकी अवस्था थोड़ी ऊपर उठती है। और वो अवस्था है परोक्ष ज्ञान, आत्म तत्व का परोक्ष ज्ञान, परमात्म तत्व का परोक्ष ज्ञान। उसको फिर शास्त्र के द्वारा मालूम होने लगता है कि आत्मा नाम की कोई चीज है, शरीर से भी परे। नहीं तो सामान्य आदमी को नहीं मालूम पड़ता है, ये शरीर ही सब कुछ समझता है। उसको तो ये भी नहीं मालूम पड़ता कि इसके परे कोई जीव तत्व भी है। धीरे धीरे उसको मालूम पड़ने लगता है, परोक्ष ज्ञान इसको बोलते हैं। आत्मा है, हम नहीं जानते उसको, लेकिन वो है। हम नहीं जानते ईश्वर को, भगवान को, लेकिन वो है। ये जो परोक्ष ज्ञान है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आदमी परोक्ष ज्ञान को जितना सरल समझता है, उतना परोक्ष ज्ञान सरल नहीं है। परोक्ष ज्ञान केवल श्रवणजन्य ज्ञान नहीं है, वो श्रवणजन्य जरूर है, लेकिन केवल श्रवणजन्य नहीं। आपने सुना और सुनने के बाद एक शब्द का स्वभाव है, उसकी आकृति आपके सामने प्रकट हो जाती है। आप किसी भी चीज को सुनते हैं तो वो शब्द आपके सामने एक आकृति पैदा करता है और उसके बारे में अस्तित्व बोध जगाता है। आपको मालूम होने लगता है वो चीज है, लेकिन उस चीज का होना आपके मन को कितना छूता है, ये आपकी भीतर की मनोदिशा पर, मनोदशा पर निर्भर है। मैं आपको पूछता हूं, स्वर्ग है मालूम पड़ा आपको? आपने शास्त्र से सुना है स्वर्ग का मो ये तो बहुत सारी चीजें आपने सुनी, स्वर्ग के बारे में सुना। आपको कोई पूछे स्वर्ग है तो आप क्या जवाब दोगे? आप बहुत गहराई से जवाब नहीं दे रहे हैं। आजकल लोग स्वर्ग और मृत्यु से उतना, नरक से प्रभावित नहीं है। पहले जमाने के लोग नरक से डरते थे, अब यहां कितने लोग हैं जो नरक से डरते हैं? तो आप बहुत सुबुद्ध हैं, हाथ ऊपर करने के लिए बोलूंगा नहीं भाई। आप इनमें से मेरे को लगता है एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो नरक से डरता हो। क्यों नहीं डरते हैं? इसलिए नहीं कि आप बहुत अच्छा कर्म करते हैं, आप इसलिए डरते हैं क्योंकि उस पर भरोसा खत्म हो गया है। पुराने जमाने के लोगों के मन में बहुत गहरी भावना हुआ करती थी कि नर्क है और उसमें जाना पड़ेगा और वहां ये कर्म करने के बाद ये फल हमको मिलेगा। दो ही चीजें हैं, वासना का प्रकर्ष और उसके अस्तित्व की अस्वीकृति। ये दो चीजें हमें निर्भय बना देती हैं। इतनी गहरी वासना है, भले ही हमें नरक जाना पड़े है, लेकिन इतनी गहरी वासना है और इसलिए आदमी सोचता है भले ही हमें नरक जाना पड़े लेकिन हम ये करेंगे। डॉक्टर बोलता है कि भैया डायबिटीज है, ये मीठा मत खाओ, मालूम है शुगर बढ़ेगी, लेकिन आदमी सोचता है कि चलो देखेंगे है? अभी तो खा ले, और उसके बाद सोचता है कि गोली खा लेंगे और क्या है, शुगर बढ़ भी जाए तो गोली खा लेंगे। मतलब आदमी कितना बुद्धिमान है, पहले रोग को बढ़ाना चाहता है और उसके साथ ही वो गोली भी खाना चाहता है। अब आप आदमी को बुद्धिमान कहे किया उससे भी ज्यादा, इतनी वासना प्रखर है। कई बार हमारे पास अभी कुछ लोग आए थे, जब मैं प्रसाद देने लगा तो एक आदमी बड़ा जल्दी उठा और जल्दी उठ करके उन्होंने प्रसाद लिया, तो उसके बगल वाले ने कहा कि महाराज इसको शुगर है और इसको मालूम है कि प्रसाद रूप में मैं खाऊं तो कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, और बोले डबल भी लेता है, और ये बोले घर में पत्नी नहीं खाने देती इसको चावल, और जब बाहर जाएगा तो बोले चावल ही चावल खाता है हमारा जो मन है, हमारी जो वासना है, वो इतनी प्रखर है कि उसके रिजल्ट पर चिंतन नहीं करती है। हम सोचते हैं कि भले ही बीमार पड़ जाए लेकिन हम खा लेंगे। कई बार हमको भी लोग बोलते हैं महाराज ये खा लो और आप चिंता मत करो, बोले डॉक्टर भी है आपके पास, वो डॉक्टर भी दिखा देते हैं और वो बीमारी का सारा आयोजन भी करते हैं। ये वासना का प्रकर्ष ये हमें ले जाता है वहां। इसलिए आदमी सोचता है भले ही नरक हो लेकिन हम ये तो काम करेंगे, भले जाना पड़े, अथवा उस पर भरोसा ही नहीं है, नरक आदि के ऊपर भरोसा ही नहीं। तो आपको यदि कोई बोले कि भैया ये आप बच्चों को कब तक डराओगे, आप छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको आप भूत 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 डरा दो, और वो बड़ा होने के बाद फिर यदि मम्मी उसको बोल दे कि भूत आएगा तो क्या बोलेगा वो अरे वो बच्चा था तब तक तो ठीक है, और बाद में बड़ा होने के बाद आप उसको बोलोगी भूत, वो आपको ही डरा देगा। अब वो बात खत्म हो गई, उसके भीतर उस भूत की भावना ही खत्म हो गई। इसलिए नरक आदि स्वर्ग आपके सामने, उसका अस्तित्व ही आप भरोसे का नहीं रहा, आदमी का भरोसा नहीं रहा, और इसीलिए आदमी के सामने स्वर्ग का न प्रलोभन है और न नरक का भय। परोक्ष ज्ञान जो है, अस्तित्व का ज्ञान, ये बहुत ऊंची चीज है। परोक्ष ज्ञान आप जो श्रवण करते हैं बहुत ऊंची चीज है। ये परोक्ष ज्ञान समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। परोक्ष ज्ञान माने अस्तित्व की गहरी अनुभूति। आपने देखा नहीं है लेकिन उसका अस्तित्व आपके मन को गहरा छूता है, आप उसके अस्तित्व को प्रत्यक्ष की तरह स्वीकार करते हैं। आपने प्रत्यक्ष देखा नहीं है लेकिन प्रत्यक्ष की तरह आपने उसको स्वीकार कर लिया है, उसके अस्तित्व को। भगवान है, अब ध्यान देना मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूं, भगवान है, आत्मा है, आपको इसका ज्ञान है कि नहीं? यदि मैं आपको कस के पूछूं तो आप चुप हो जाओगे। मैं पूछूं कि मधु बाबू है कि नहीं, अभी जितने भी लोग बैठे हैं तो आप सब आवाज देंगे हां है, और यदि मैं दोबारा पूछूं तो आप बोलेंगे भैया है, वो है है है, वो हम अपने आंखों से देख रहे हैं। माने उनके अस्तित्व की गहरी अनुभूति है, उनका होना बहुत गहरा है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा ही अस्तित्व हमें परोक्ष ज्ञान में हो, घर में छोटा सा बच्चा है बहुत शरारती है और वो मां से नहीं डरता है, वो अपने पिता से डरता है। उनके पिताजी कहीं बाहर गए हुए और बच्चा बहुत शरारत कर रहा है, बहुत शरारत कर रहा है, मां बहुत समझाती है, बहुत समझाती है, लेकिन वो बच्चा मानता नहीं। मां बोलती है पिताजी आएंगे, उसको मालूम है अभी तो है ही नहीं, लेकिन आश्चर्य की बात जैसे ही उनकी गाड़ी आती है पिताजी की और उस गाड़ी की आवाज बच्चे के कान पर पहुंचती है और वो बच्चा दौड़ करके जाता है अपनी पुस्तक लेकर शांति से बैठा रहता है। अभी उन्होंने पिताजी को देखा नहीं है, केवल आवाज सुनी, गाड़ी की आवाज सुनी और बिल्कुल शांत हो गया और अपनी पुस्तक लेकर के पढ़ने लगा। मम्मी ने बोला आओ इधर खेलो, बोले नहीं अब मेरे को पढ़ना है। ये क्या हो गया, ये परोक्ष ज्ञान है, आज इसको बोलते परोक्ष ज्ञान। एक बार की बात है, एक कोई चोर अपने बच्चे को लेकर चोरी करने के लिए गया। लेकिन जैसे वो चोरी करने लगा, मालिक जगा, हल्ला मचा और दोनों बाप बेटे भागे। बहुत दूर तक भागे, वहीं पर एक सत्संग हो रहा था, महात्मा जी कोई सत्संग कर रहे थे। उस सत्संग में जाके दोनों बैठ गए आराम से ऐसे। वो व्यक्ति आया, देखा बहुत सारी भीड़ थी, वो लौट गया। महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे और वो विषय ऐसा ही था कि भगवान सर्वज्ञ हैं, सबको देखते हैं और उनके नजर से कोई व्यक्ति ओझल नहीं होता है। आप कितना भी छिपाने की कोशिश करो लेकिन देखने वाला वो है, हमेशा देखता है। पिता ने इशारा किया बच्चे को, चलो हो गया काम अपना। अब वो जो मकान का मालिक था वो चला गया, चलो यहां से अब दूसरी चोरी देख रहे थे। कई दिनों के बाद वो दूसरे जगह पर चोरी करने के लिए गए। पिता ने बोला अपने बच्चे को, बेटा मैं अंदर जाता हूं और बहुत सावधानी से देखना, जैसे ही कहीं से कोई आदमी आ जाए, कोई जगने लगे, तुम तुरंत मेरे को सूचना देना जिससे कि हम अच्छी तरह से भाग पाए, हम पकड़े न जाए। बच्चे ने कहा बिल्कुल ठीक। बच्चा बाहर खड़ा है, देख रहा है। अचानक उस बच्चे ने आवाज लगा दी, पिताजी आइए आइए, वो देख रहा है, वो देख रहा है, पिताजी आइए, वो देख रहा है, वो देख रहा है। पिताजी भागे भागे बाहर आए, बहुत दूर तक भागते हुए चले गए। हाँपते हाँपते पिता ने पूछा कि कौन देख रहा था, बच्चे ने बोला वो ऊपर वाला देख रहा था। ऊपर वाला देख रहा था। बाप ने एक चाटा मारा, बोले ऊपर वाले के देखने से क्या होता है, चल चोरी करने के लिए। बेटे ने बोला अब नहीं, वो देख रहा है। बोले दुनिया भले ही ना देखे लेकिन देखने वाला वो है। उसके पिता ने उस बच्चे को बहुत समझाया चलो चोरी करने के लिए, लेकिन उसने कहा नहीं अब नहीं। सुना तो दोनों ने, उस बात को दोनों ने भी सुना था, बाप ने भी सुना था और बेटे ने भी सुना था कि वो हैं और वो सबको देखता है। लेकिन नारायण एक में बदलाव आया, परिवर्तन आया, उसको मालूम पड़ा कि वो देखने वाला, वो सबको देख रहा है, वो मेरे को भी देख रहा है। जब मैं चोरी करूंगा तो भी मेरे को देखेगा और उसका दंड मुझे देगा। ये गलत काम है, वो हम उससे बचकर हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर उस बच्चे ने कभी चोरी नहीं की, अपने पिता के चोरी के काम में कभी सम्मिलित नहीं हुआ। और वो पिताजी जो है ना, वो हमेशा चोरी करता रहा और वो लोगों को बोलता भी रहा देखने वाला सबको देखता है, और उसके बाद भी चोरी भी करता रहा। वो बात उन्होंने सुनी थी और ज्ञान भी हो गया था। लेकिन आप उस दो ज्ञानों को क्या बोलेंगे? आप उस बच्चे को पूछना कि देखने वाला सबको देखता है, उसको तुमने देखा है क्या? वो बच्चा ये बोलेगा भले ही मैंने नहीं देखा है उसको, लेकिन वो मेरे को देखता है, वो मेरे को देख रहा है। एक महात्मा हुए बहुत ऊंचे, पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज, आंख से अंधे थे और वो हमेशा बिहारी जी के मंदिर में जाया करते थे, हमेशा जाते थे। जब भी वृंदावन में हो तो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाते थे। किसी ने पूछा कि आप क्या करने के लिए आते हो यहां, आपको तो दिखता नहीं है, आप यहां आते हो, और वो बोलते थे कि मैं जा रहा हूं बिहारी दर्शन करने के। लोगों ने कहा कि आप क्या करने के लिए आते हो, आपको तो दिखता नहीं, आने की जरूरत ही नहीं है, हमारा आना तो सार्थक है क्योंकि हम तो देख लेते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा भले ही मैं नहीं देखता हूं लेकिन वो तो देखने वाला है, भले ही मैं उनको देख नहीं पाता हूं लेकिन उनके सामने आता हूं तो वो तो देख लेता है, वो तो आंख वाला है, वो सबको देखता है। और जब मैं यहां आता हूं तो उनको मालूम होता है कि हां ये आ गया भैया। एक उपस्थिति देना है, एक हाजिरी देना है वहां। उस बच्चे के मन में गहरी आस्था कि देखने वाला वो है और वो सबको देखता है। सुना, दोनों ने भी सुना, लेकिन एक ज्ञान उसके जीवन में बदलाव लाया और दूसरा दूसरे का ज्ञान बदलाव नहीं ला पाया। इन दो ज्ञानों को आप क्या कहेंगे? उस बेटे को जो ज्ञान हुआ ना, ये वास्तविक परोक्ष ज्ञान, इसको बोलते हैं परोक्ष ज्ञान। आपको मालूम हो जाए कि खुफिया कैमरे आपको देख रहे हैं तो आपकी चाल ढाल में भी बदलाव आएगा। अब यहां पर सब जगह पर कैमरे लगे हुए हैं और आप ऑफिस में बैठ करके सब आप देख सकते हैं, और मालूम हो जाए कि सब मेरे को देख रहे हैं तो आपकी क्रियाएं नियंत्रित होगी, आपके मन पर भी नियंत्रण होगा और आपके तन पर भी नियंत्रण होगा, यहां तक कि आपके चलने पर भी नियंत्रण होगा, क्योंकि मालूम है कोई देखने वाला है। ऐसे आपको मालूम हो जाए कि देखने वाला वो ईश्वर है, भगवान है, सबको देखने, तो हमारी क्रियाओं पर नियंत्रण होगा कि नहीं? ये तो बहुत गहरी बात है। इसलिए परोक्ष ज्ञान बहुत बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है। हम सामान्य हम समझते हैं परोक्ष ज्ञान हो गया, परोक्ष ज्ञान ईश्वर है बोले हाँ परोक्ष ज्ञान हो गया, आत्मा परोक्ष ज्ञान हो गया, बाकी रह गया केवल अपरोक्ष ज्ञान, हम ये सोचते हैं। लेकिन जिस परोक्ष ज्ञान के बाद अपरोक्ष ज्ञान होता है वो परोक्ष ज्ञान भी बहुत कठिन है। इसलिए हम सामान्य ज्ञान को परोक्ष ज्ञान न समझे। किसी को ज्ञान हो गया भगवान है, मेरे को नहीं लगता है कि जब इतना भी ज्ञान हो गया कि मेरे को कोई देख रहा है तो आदमी की सारी उछल कूदे बंद हो जाती हैं, और आपको मालूम हो जाए कि देखने वाला ईश्वर है, वो सर्वज्ञ है, इतना ज्ञान हो जाए तो फिर हमारी उछल कूद बंद होगी कि नहीं? परोक्ष ज्ञान जिसको हो जाए वो आदमी बहुत आत्मसंयम में चला जाता है, उसका मन शास्त्रीय हो जाता है, उसका मन परम धार्मिक हो जाता है, उसके द्वारा अब कोई गलत काम नहीं हो सकेंगे, अब वो ईश्वर का यंत्र बन जाता है। जैसे एक बहुत बड़े व्यक्ति के नेतृत्व में उसके साक्षी में आदमी नियंत्रित हो जाता है, जैसे बड़े आदमी के सामने उसके नीचे वाले सारे लोग नियंत्रित हो जाते हैं, बहुत नियंत्रित हो जाते हैं, ऐसे ईश्वर के साक्षित्व में उसके अस्तित्व के बोध में व्यक्ति का संपूर्ण जीवन नियंत्रित हो जाता है। इसलिए परोक्ष ज्ञान होने के बाद अपरोक्ष ज्ञान होने की देर नहीं है। ज्ञान हुआ सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्मा, ब्रह्म है आनंदम विज्ञानम ब्रह्मा, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसं विशन्ति तद् ब्रह्मा। इस सृष्टि का निर्माण करने वाला, पालन पोषण करने वाला, अंत में संपूर्ण सृष्टि को अपने में मिलाने वाला जो ब्रह्म है, वही तत्व आकाशवत सर्वगतश्च नित्य सब जगह पर है, वो सर्वज्ञ यह सर्वज्ञ स सर्वविद, ये सारी चीजें आपको मालूम पड़े, एहसास होने लगा वो है, आपके सांसों में भी है, आपके आंख में भी है, आपके कान में भी, आपके भीतर भी, बाहर भी, सब जगह पर वो तत्व है। आपको उस परमात्मा के अस्तित्व की खुशबू मालूम पड़ने लग जाए, ये बहुत गहरा ज्ञान है। वो जैसे आपको एहसास होता है हवा है, आपको एहसास होता है, आपको एहसास होता है गर्मी है, आपको एहसास होने लगे कि वो तत्व हैं, अब केवल एक चीज बाकी रह गई कि वो चीज मैं हूं। परोक्ष ज्ञान के बाद अपरोक्ष ज्ञान, आपको परोक्ष ज्ञान हुआ और अपरोक्ष ज्ञान किसी कारण से नहीं हो पाया, तो पंचदशीकार कहते हैं कि परोक्ष ज्ञान होने वाले व्यक्ति को व्यक्ति की दुर्दशा नहीं होगी, वो सीधा ब्रह्मलोक चला जाएगा, ऐसा लिखा होगा। और ब्रह्मलोक में जाने के बाद वो जो प्रतिबंध था, अपरोक्ष ज्ञान होने में जो प्रतिबंध था, उसकी यदि वासना कोई रह गई तो वो वहां पर पूर्ण करेगा, और उसके बाद फिर जब पैदा होगा तो ज्ञानी बन के ही पैदा होगा। यहां आने के बाद फिर उसको ज्ञान में विलंब नहीं होगा, वो तो क्यों लिखा था वाक्य कहीं सुन ले और तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाए, उसको बहुत ज्यादा फिर साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें परोक्ष ज्ञान तक ही पहुंचना है, सबसे बड़ी कीमती जो चीज है वो परोक्ष ज्ञान, ईश्वर के गहरे अस्तित्व का बोध होना ही हमारे जीवन की महत्वपूर्ण चीज। और बाकी दशमश तमसी तो बहुत छोटी चीज है। रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी जी ने ज्ञान का उपदेश कितना किया, बहुत थोड़ा सा उपदेश, और उतने उपदेश में उनका काम हो गया। एक आपके महाराष्ट्र में भी एक कोई महापुरुष हो चुके हैं, कौन से
निसर्गदत्त महाराज,
अच्छा निसर्गदत्त जी महाराज, एक और भी एक हु आया आया, उन्होंने पुस्तक लिखी है। किसी ने मुझे को बोला था कि वो कहीं है और भी, वो भी बड़ी अद्भुत घटना है। वो पान बेचा करते थे, हो सकते हैं वो बिल्कुल होंगे, क्योंकि उनका बीड़ी आओ, बस वही 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 बस हमने सुना कि वही पान बेचते बीड़ी बेचते बनाते, ऐसा ही कोई छोटा मोटा काम था उनका। और एक बार कोई सिद्ध पुरुष पहुंच गए, और अब अकाड़े का कोई साधु, और वहां गए और उन्होंने उनको बोला कि भैया हमको पान नहीं खिलाओगे, उन्होंने पान खिलाया होगा या बीड़ी पिलाया होगा, वो प्रसन्न हो गए साधु, और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा भैया इसका पैसा क्या दूं, उन्होंने कहा महाराज आपकी सेवा हो गई, क्या पैसा देना है, ये तो छोटी सी आपकी सेवा। तो महात्मा जी प्रसन्न होके उन्होंने कहा कि भैया मैं बिना कुछ दिए ये चीज नहीं ले सकता हूं, और मैं तुमको देता हूं, वहां इतनी योग्यता है नारायण, वहां इतना गहरा अस्तित्व बोध है, परमात्मा के प्रति आस्था श्रद्धा, और इतना अंतःकरण विशुद्ध है कि उन्होंने उनको उपदेश कर दिया तत्वमसि। जो तुम अनुभव करते हो ना हर जगह पर, जिस परमात्मा का आप अनुभव करते हो वो, और तुम अलग नहीं है, तुम देह से परे वो जो सर्वत्र चेतना वो तुम हो तत्वमसि। और उस व्यक्ति को उतने में ज्ञान हो गया, और उसके बाद फिर जो काम करते रहे, जो धंधा करते रहे, वही करते रहे, वर्षों बीते और उसी में मस्त रहते, वो आत्मज्ञान को उपलब्ध, शोक मोह से मुक्त, और वहां कोई प्रदर्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, धीरे धीरे वो ऐसा ही होता है। जो साधक होते हैं ना वो पहुंच जाते हैं, फूल खिलता है तो भौरों को निमंत्रण देना नहीं पड़ता है, और वो पता नहीं कहां से आ जाते हैं। आपके पास गुड़ हो तो चींटियों को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है, मक्खियां अपने आप भिनभिनाने लगती, आपको मालूम ही नहीं पड़ता किधर से आ गए। ऐसे साधक लोग ना एकत्रित हो जाते हैं जहां पर वो ज्ञान की चेतना प्रकट हो जाए। एक कोई बहुत सुदूर देश का एक अंग्रेज व्यक्ति आ गया, और उनकी दुकान के सामने बैठा रहता था, और उनसे बुलवा लेता था, और वो लिखता था, यहां के देश के लोगों को कुछ नहीं मालूम था, और उस अंग्रेज ने फिर उन्हीं की पुस्तक लिखी हु आई एम आई, और वो प्रकाशित हो गई, बड़ा प्रचार, वो विदेशी लोग आ जाते हैं और इनके दुकान के सामने बैठे रहते थे। हम लोगों से ज्यादा अलर्ट हैं वो अंग्रेज लोग, सचमुच उनके साथ केवल सत्वगुण उस रजोगुण के साथ सत्वगुण जुड़ जाता था। अभी जहां बिहार योगा योगा बिहार है ना, योगा स्कूल ऑफ बिहार, उसमें भागवत की कथा थी, उनका एक और एक स्थान है रिखिया। तो मैंने देखा पचासों अंग्रेज तो, और अपने लोग तो बीच में पानी पीने के लिए चले जाते थे, अपने लोग घूम के आ जाते, और कई बार तो अपने लोग थोड़ा सा सोखे भी आ जाते। लेकिन मैंने देखा वो अंग्रेज सबसे आगे बैठे रहे, एक बच्चे बच्चे हाथ जोड़, मैं आश्चर्यचकित हो जाता था। स्वामी जी ने उनको पूछा कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं, और आंखों में आंसू, बोले हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमको इतना मालूम है कोई बहुत बड़ी चीज हो रही है, कोई बहुत बड़ी चीज बोली जा रही है, बोले इतना मालूम है, और उतने में ही अपने आप को समाहित कर। आश्चर्य बात। और वो बहुत सारे अंग्रेज वहां दुकान के सामने आके बैठे रहते थे, लोग समझते पता नहीं क्या है ये, पागल लोग हैं ये, तो बीड़ी बेचने वाला, पान बेचने वाला, इसमें क्या, इससे ज्यादा तो हम जानते हैं। और जब उन्होंने पुस्तकें लिखी और कुछ छोटा सेंटर भी बनाया कोई, तब लोगों को मालूम पड़ा कि ये तो ब्रह्मज्ञानी है, और उनको ज्ञान को पाने के लिए कितना कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं, गुरु ने एक वाक्य उपदेश किया और उनका काम हो गया। काम होने के लिए उपदेशों की कमी नहीं है, बीज की कमी नहीं है, जमीन की कमी है, क्या करेंगे, ऊसर भूमि है, क्या करे, वो जमीनी ऐसी है, कितना भी अच्छा बीज डाले अंकुर पैदा भी होता तो यूं छोटा सा मरा मराया, वो टीबी के मरीज की तरह। और भूमि यदि तैयार है, खाद डाली हुई तैयार भूमि है, और उसमें आप कोई भी बीज डालो, कोई भी बीज डालो, यूं आपका वो बीज बहुत अच्छी तरह से पैदा हो जाता है, वो प्रकट हो जाता है जादू की तरह। इसलिए ये जो परोक्ष ज्ञान है ना, परोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही सारी साधना है। भले हम तत्वमस्यादि महावाक्यों का विचार करते हैं, फिर भी परोक्ष ज्ञान को पाए बिना आप अपरोक्ष ज्ञान कैसे पाएंगे। तत्वमसि वो तुम हो, पहले उसका तो ज्ञान हो, उसका ही पता नहीं है, और हम बोले आपको कि वो तुम हो तो आप क्या कहोगे, पहले उसका तो पता हो। तत्त्वम असि वो तुम हो, लेकिन वो है कौन, उसका क्या पता है, उसकी क्या खबर है। यदि उसका ही पता ना, और मैं बोलूं कि वो तुम हो, वो तुम, मेरे को आप बोलोगे भैया वो कौन है, पहले वो तो बताओ, तब मैं हम समझे कि वो तुम हो। इसलिए परोक्ष ज्ञान माने तत्का बोध, सर्वत्र जो परम तत्व परमात्मा ब्रह्म तत्व है, जो कण कण में विराजमान है, तत्व एहसास हुआ सब उसका, और उसके बाद अरे बोले वही तुम हो, वो कोई अलग है, वो और तुम अलग नहीं हो, ज्ञान हो गया, एक रूप है हम। इसमें तत्व का जो बोध है गहरा अस्तित्व बोध, वो परोक्ष ज्ञान। इसलिए श्रवण मनन निरिध्यासन जप ध्यान तीर्थाटन सेवा, ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे अंतकरण को निर्मल बना देते हैं, और जैसे जैसे हमारा अंतकरण निर्मल होने लगता है, वैसे वैसे उसका बोध होने लगता है, वो है, वो है, वो है। आप उसके अस्तित्व को बहुत गहराई से अनुभव करेंगे आप। इसलिए परोक्ष ज्ञान किसी को हो जाए ना रहे, वो तो बहुत बड़ी चीज हो गई हो, बहुत बड़ी चीज हो गई हो। आप तो केवल 1% बाकी, जैसे हस्ताक्षर कर आपने पूरी बना के रखी है, क्या बोलते हैं, रजिस्ट्री पेपर बना के रखे, केवल हस्ताक्षर बाकी है कि नहीं। अब क्या करना है, केवल हस्ताक्षर करना है भैया, अंतिम अंतिम बस हस्ताक्षर हो गया और वो बात कंप्लीट हो गई। ये तत्वमस्यादि महावाक्य केवल हस्ताक्षर कर देते हैं, तुम हो, वही हो, तुम तो हो ही पहले से, जो पहले से ही है उसको केवल जान लेते हैं हम, और उसके बाद अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद, फिर अपरोक्ष ज्ञान हो गया, अब मुक्त हो गया, यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्मा, यहां जो कहते हैं ना पश्यति,
तम अक्रतु, आपको अक्रतु धातु प्रसादान, ये परोक्ष ज्ञान को पाने के लिए साधन है। अभी इसके ऊपर मैंने बहुत चर्चा की कल। अक्रतु अकाम निष्काम साधना जप ध्यान इंद्रिय निग्रह शम दम वैराग्य उपरत, ये सारी चीजें धातु प्रसाद है। ये तम अक्रतु, और उसके बाद फिर महिमानम आत्मनः पश्यति, ये अपरोक्ष ज्ञान। और एक बार अपरोक्ष ज्ञान हो गया तो आपका नंबर आया फिर शोकनाश वीत शोको, ये आपकी अवस्था है। परोक्ष ज्ञान के बाद अपरोक्ष ज्ञान, और अपरोक्ष ज्ञान के बाद फिर शोकनाश। अब जीवन में कोई शोक नहीं है। अर्जुन ने कहा ना, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत, आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान होने के बाद फिर नष्टो मोह, सबसे पहली जो घोषणा है यही है शोकनाश। नष्टो मोह, मोह नष्ट हो गया, और मोह ही तो नष्ट करना है, और क्या करना है। और एक बार मोह नष्ट हो गया नारायण, यही तो मोक्ष है। आनंदावाप्ति, आपकी अंतिम अवस्था बताई, शोकनाश और आनंदावाप्ति, ये मोक्ष रूपा है। वीत शोको, आचार्य यम ने कहा कि अब तो मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। जब उस आत्मा को, आत्मज्ञान को प्राप्त करोगे तो वीत शोको, और इसी के अंदर आनंदावाप्ति, शोक नाश हुआ, उसके बाद क्या है, आनंद ही आनंद ही तो है। एक ही श्लोक में उन्होंने बहुत सारी चीजें बता दी। ये सात अवस्था, पहली जो तीन अवस्था है अज्ञान आवरण विक्षेप, ये बंधन रूपा है। परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान ये साधन रूपा अवस्था है, और शोकनाश आनंदावाप्ति ये मोक्ष रूपा अवस्था है। तो साधक इन अवस्थाओं से गुजरता है, ये क्रमिक विकास, ये क्रमिक विकास है। धीरे धीरे अपने जीवन को ऊपर उठाते जाना है, और जब ये अंतिम दो अवस्थाएं प्राप्त हो गई, शोकनाश आनंदावाप्ति, अब साधक के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, अब मुक्त हो गया है। और आपके वेदांत का चरम लक्ष्य भी यही है, मोक्षोपलब्धि। और इस मोक्षोपलब्धि तक पहुंचने का साधन आपको यहीं से, अभी जहां भगवान ने गीताजी में बहुत गहरी बात बोली, भगवान ने कहा कि तुम उठना चाहते हो तो तुम जहां हो वहीं से उठो, तुम चलना चाहते हो तुम जहां हो वहीं से चलो, संभव नहीं है, आप जहां नहीं है वहां से आप चलना शुरू करो। पहले हम देखें हम है कहां, और जहां है वहीं से। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल मस्थिरम ततस्ततो नियम्यत, आप जहां है, आपको चलना शुरू करना है तो आप कहां से चलना शुरू कर सकते हैं। आप प्रेमपुरी में हैं तो आप चलना शुरू कहां से करेंगे, आपको यहीं से चलना शुरू करना पड़ेगा। ऐसा कभी संभव नहीं है कि आप प्रेमपुरी में हो और आप वृंदावन से चलना शुरू कर दो। लेकिन कई बार हम गड़बड़ करते हैं, हम होते हैं कहीं और चलना शुरू करना चाहते हैं कहीं, इसलिए जहां है वहीं से चलना शुरू करना है। वो हमारी योग्यता है, वो हमारी योग्यता है। इसलिए देखें हम कौन हैं, हमारी स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है, हमारे अंदर कमियां क्या है, हम चल सकते हैं, और हमारी चलने की योग्यता कितनी है। हम चल भी सकते हैं तो हम कौन से रास्ते पर चल सकते हैं, और जहां पर है उसको गहराई से समझकर वहीं से साधना। यहां कूदने की, यहां पर कूदने की नारायण, या दूसरे के रास्ते पर चलने की कोई साधना नहीं है। आपका जो भाव है अंदर, बस उसी भाव को आगे बढ़ाना है, आपके अंदर जो भाव है उसी भाव को आगे बढ़ाना है। और एक महत्व की बात, जो चीज आपको रसपूर्ण सहज सरल मालूम पड़े, जो चीज आपको रसपूर्ण सहज सरल मालूम पड़े, आप समझना वो आपका स्वभाव है। आप जो चीज करने जा रहे हैं, जप करने जा रहे हैं, ध्यान करने जा रहे हैं, सत्संग करने जा रहे हैं, श्रवण मनन निरिध्यासन करने जा रहे हैं, ध्यान करने जा रहे हैं, और वो करते समय आपको बहुत सरल मालूम पड़े, सहज मालूम पड़े, सरस मालूम पड़े, तो आप समझना कि वो आपका मार्ग है। आपको बहुत आनंद आया जप में, ध्यान में, सत्संग में, समझ लो कि वो आपका मार्ग है। आपको कोई बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ रहा है, वो आपका मार्ग है। थोड़ा सा परिश्रम करने पर भी आप अपने भीतर उन्नति, विकास, आनंद, रस का अनुभव कर रहे, वो आपका मार्ग। इसलिए भगवान ने कहा कि आप जहां हैं वहीं से अपना चलना शुरू करो, और बिना चले विकास संभव नहीं है, बिना किए पाना संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने गीता जी में और हमारे शास्त्रों ने आपको उपदेश करते हुए कहा, आत्मावादी श्रोतव्यो, आपको श्रवण करना चाहिए, ऐसा बोला है, आपको करना चाहिए। आपको भगवान ने गीता जी में उपदेश करते समय भी कुरु शब्द का प्रयोग बहुत किया, करो 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 करो, बिना किए हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए साधना करने से होती है। हम केवल ऐसा सोचे कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे या गुरु कृपा करेंगे तब हमको आत्मज्ञान होगा, ये बहुत बड़ी हमारी ये निकम्मी मनोवृत्ति है। हम बिना किए कुछ पाना चाहते हैं, और बिना कुछ किए पाने की भावना ये भ्रष्टाचार है, और ये निकम्मापन, आदमी जो भ्रष्ट होता है ना, यहीं से होता है। बिना श्रम, बिना मूल्य चुकाए खाने की भावना आदमी को भ्रष्ट बना देती है, और हर जगह पर आदमी सोचता है कि हमें कुछ करना न पड़े और गुरु शिर पर हाथ रख दे और हमको, ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये बिना किए बिना मूल्य चुकाए आप बिना किए कुछ पाना चाहते हैं, और ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन हम सोचते जरूर हैं। इसलिए भगवान ने बार बार बोला, बार बार बोला, करो करो करो, पुरुषार्थ करो। और श्रुति भी कहती है, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलो 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 आगे बढ़ो। ये साधना, जप, ध्यान, जीवन का परिमार्जन, परिशुद्धि, ये सारी चीजें हम जैसे जैसे करते जाते हैं वैसे वैसे परोक्ष ज्ञान अंदर से उस परम तत्व परमात्मा की गहरी अनुभूति, उसका अस्तित्व बोध जगने लगता है, हमारे जीवन में बदलाव आने लगता है। और वो बदलाव केवल हमको ही नहीं मालूम पड़ता है, आसपास के सबको मालूम पड़ता है। आपकी हर चीज आसपास के लोगों को सूचना देती है, आपका जीवन ही सूचना देता है। ये बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने, तमक क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। आप जानेंगे उसको, शोक मोह से मुक्त होकर आत्मरूप मोक्ष को प्राप्त करोगे। अगले श्लोक में, आशीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति। आप उनकी एक अलौकिक अनिर्वचनीयता उस तत्व की, उसका प्रतिपादन करेंगे। आप सीधे बैठ जाएं। ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ॐ ह्रीं 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 नमः शिवाय, ॐ ह्रीं
ह्रीं नमः शिवाय ॐ 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 शान्तिः शान्तिः शान्तिः।